तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तहारत बहुत ही अहम टॉपिक है। दीन इस्लाम सफाई सुथराई का दीन है। जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो सबसे पहले उसको गुसल करने का हुक्म दिया जाता है, वाजिब होता है उस पर। वजह क्या है कि जहालत और कुफर के दौर में अगर उसने कई दफ़ा ख़ुद को पाक ना किया हो तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। आप हदीस की बड़ी से बड़ी बुक्स खोल लीजिए, सबसे बड़ी तो उसमें बुखारी की मिसाल है कि सबसे पहले आपको बाप मिलेगा तहारत का। यानी जब भी मामलात शुरू होते हैं इबादत के, तो इबादत से पहले तहारत शर्त है। मेरा दिल तो यही चाहा कि मैं सिर्फ आज आपको नमाज़ पे दूँ, कल रोज़े पे, फिर परसों हज पे, फिर ज़कात पे, पर मुझे लगा ये आपके साथ ख़यानत होगी। क्यों? कि ये चीज़ें तो आपको इधर उधर और भी बहुत जगह बाद में ज़िंदगी में मिलती रहेंगी, क्योंकि इन मौज़ूआत पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बात भी होती है, लेकिन वो चीज़ जो बुनियाद है वो तहारत है। तो आज इंशाल्लाह हम डिटेल से तहारत को देखेंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई भी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, जो आपके लिए अभी फ़ायदेमंद है वो लेंगे, बाकी आप बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको यहाँ से इस्लाम का मिजाज भी समझ आ जाना चाहिए कि दीन इस्लाम में हर चीज़ की एक अपनी जगह है। तो अल्लाह ताला हमें इस मौजू का हक अदा करने वाला बनाए। तो तहारत क्या होती है, पहले चंद बातें अब तहारत के मौजू पर, फिर उसके बाद देखिए तहारत दो तरह से होती है, एक ज़ाहरी तहारत और एक बातनी तहारत। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर एक शख्स अंदर से पाक हो जाता है, बाहर से गुसल करवा कर उससे दूसरी तहारत हासिल की जाती है जो कि इंसान को बाहर से भी पाक कर दे। दिल में तहारत आती है अखलास से, कलमे तैयबा से, और बाहर की तहारत आती है मसनून तरीक़ों पे, गुसल, वुजू, अस्तंजा और इस तरह की टर्म्स को जो कि आप बचपन से सुनते आए उसको अदा करने से। तो तहारत से मुराद क्या है? नापाकी यानी हदस को दूर करना। सवाल पैदा होता है क्यों, हम क्यों तहारत हासिल करें? तो आपकी शीट में आप देख रहे हैं 9 पॉइंट्स विद रेफरेंस हैं, लिख लीजिए। नंबर एक, ये अल्लाह का हुक्म है, तहारत का हुक्म अल्लाह ने दिया। सूरत मुद्दसर 4, क्या कहा था नबी को? वसियाबक फतहर। इसी तरह माईदा 6, फतहरू का लफ्ज़ आता है। फिर दूसरी वजह क्या है कि नबी सल्लम तहारत के लिए दुआएं करते थे। सही मुस्लिम 476 इसकी दलील है। थोड़ा तेज़ बोलूँगी, जो छुट गया वो बाद में आप इंशाल्लाह वीकेंड पे पूरा करेंगे, लेकिन यह कि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम हिस्सा आप कम अज़ कम यहाँ कवर करें। तीसरी वजह तहारत की क्या है कि तहारत के बग़ैर अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह के नबी नापसंद करते थे। अबू दाऊद 17 इसकी दलील है। नेक्स्ट थिंग, नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जिसकी अदायगी के लिए ज़ाहरी तौर पर पाक होना भी लाजिम है, वरना नमाज कबूल नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं तहारत क्यों ज़रूरी है? नमाज की कबूलियत के लिए, और दलील है सही मुस्लिम 535। नेक्स्ट, तहारत नमाज की चाबी है, इब्ने माजा 275 में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के लिए तहारत का सवाल करते थे। कुरान में भी अल्लाह ने अहले बैत के तस्करे के साथ सूरत अहज़ाब 23वें पारे के बिल्कुल शुरू में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें लफ्ज़ तहारत आता है, और ये जो दलील है वो नबी सल्लम की तिरमिज़ी 3787। फिर अगली बात है, तहारत के बग़ैर कुरान मजीद को पकड़ना जायज़ नहीं, और ये कौन सी तहारत है ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मौता 419 और निसाई में भी रिवायत है। तहारत के बग़ैर यानी जब इंसान ताहिर नहीं है, बीवी ताहिर नहीं होती, तो मर्द और औरत का ताल्लुक़ जायज़ नहीं है। सूरत बकरा 222 जिसमें अल्लाह ताला ने हदें मुकर्रर की हैं, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुआ अज़न, ठीक है। इसी तरह तिरमिज़ी 135। और इसी तरह तहारत को क्यों समझें या इसका क्या ज़रूरी है कि तहारत के बग़ैर औरतें बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, ये बुखारी की रिवायत है 305। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तहारत की फजीलत क्या है? अगर हम पाक साफ़ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, प्योर रखते हैं अपने आप को, तो 3 वजूहात आपके सामने लिखी हुई हैं। सूरत बकरा 222, इन्नल्लाहा युहिब्बुल किसको पसंद करता है? मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तहारत और पाकीज़गी करने वालों को पसंद करता है। फिर दूसरी इसकी वजह, तहारत नेस्फ ईमान है, सही मुस्लिम 534। और थर्ड थिंग्स, तहारत में सुस्ती करने वालों का इंजाम बुरा है, बुखारी 216-218, क्या पता चला कि इसकी अहमियत है, फजीलत है। अब अगला क्वेश्चन है कि किन चीज़ों से हम पाक कर सकते हैं खुद को। देखिए, एक है खुद साफ़ सुथरे रहना। यहाँ हम टर्म तहारत पढ़ रहे हैं तो इस्लाम ने दो चीज़ों से तहारत हासिल करने की हमें इजाज़त दी है। नंबर एक, पानी। सूरत फुरकान 48 मान तहूरा का लफ्ज़ आया है, पाक पानी है, ख़ास तौर पर बारिश का पानी। और दूसरी तहारत वाली चीज़ है मिट्टी, सूरत निसा 43, बुखारी 347 और अबू दाऊद 76। क्वेश्चन क्या है कि जो तहारत हासिल की जाती है, ये क्या हर पानी से तहारत हासिल की जा सकती है, क्या हर मिट्टी और हर पानी से? तो जवाब यह है कि सिर्फ साफ़ पानी से तहारत हासिल की जाती है। तिर्मिज़ी 69 में ये बात मौजूद है। अब चूँकि पानी एक बहुत बड़ा ताहिर है, अरबी में इस पे बहुत टर्म्स हैं, आपने कभी हदीस पढ़ी हो तो आप ये सारी टर्म्स को मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह इस वक्त समझ जाएंगे कि पानी एक बहुत बड़ा ताहिर है। कल असाइनमेंट में आपको ये सवाल इस तरह दिया जा सकता है कि इस्लाम में कितने ताहिर हैं, तो पानी, तो थोड़ा सा पानी को देखें। और इसमें ख़ास तौर पे फिर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, जवाब, क्या स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, वजू कर सकते हैं, क्या कुछ। तो पहली बात याद रखिए कि पानी की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। नंबर एक, ताहिर पाक पानी, और गैर ताहिर नापाक पानी। सवाल पैदा होता है पाक पानी से क्या मुराद है। वो पानी, नंबर एक, जो खुद पाक हो, दूसरी बात, पाक करने की सलाहियत रखता हो, यानी गंदगी और नजासत को ख़त्म करे और नापाकी को दूर करे। बात बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि नापाक पानी से क्या मुराद है। तो नंबर एक, जो खुद भी नापाक हो और पाक करने की सलाहियत भी ना रखता हो। मुस्लिम 657। आपको ये दोनों बातों की मिसाल समझा दूं कि कुछ पानी पाक होते हैं, आप उससे गुसल या वजू कर सकते हैं कि उसको पी नहीं सकते, ये भी एक फ़र्क होता है। कुछ इसे ऑपोजिट होते हैं, मसलन आप डिस्टिल वाटर पीते भी हैं तो आप उससे वजू भी कर सकते हैं, गुसल भी कर लें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू है तो जरासीम भी आपके जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से मरें, माशाल्लाह। ऑर्गेनिक जरासीम होंगे तो वो भी फिर ऑर्गेनिक पानी से ही जाएंगे ना। हमने अपने दिमागों पे कितना डाल दिया बोझ। लेकिन बात समझ लीजिए कि पानी जो होता है वो नापाक कैसे होता है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि नापाक पानी कैसे हो जाता है। तीन वजूहात अहादीस से हमें ख़ास तौर पे मिलती हैं। नंबर एक, पानी की मकदार कम हो और नजासत और गंदगी बढ़ जाए। पानी की बाल्टी बाहर रखी थी, कुत्ता मुंह डाल गया, नापाक हो गया। दूसरी क्या है कि अगर पानी की मकदार ज़्यादा हो लेकिन गंदगी पड़ने की वजह से इसका रंग, बू या मज़ा बदल जाए, बात समझ गए, तो भी नापाक होगा। तो दो वजूहात बेसिकली, नंबर एक, थोड़े पानी में गंदगी पड़ जाए, और दूसरी बात है कि पानी का रंग बदल जाए, जायका बदल जाए या उसमें बू शामिल हो। ये बहुत बड़ा असूल है इस चीज़ के लिए। मसलन आप देखिए कि स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल बहुत बड़ा था, अब उसमें कोई गंदी चीज़ गिरी और निकल गई, अब उसकी ये सारी डायमेंशन है, इसको हम फिक्र की रोशनी में बहुत लंबा आगे नहीं लेके जा सकते, सिर्फ मैं आपको सोचने का अंदाज सिखा रही हूँ। समंदर में कुछ भी गिर जाए सब पाक है, समंदर पूरा पाक है, बहता पानी पाक होता है। आप वजू भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, उससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन पानी की नापाकी की वजह क्या होती है, थोड़े पानी में कुछ पड़ गया, आप देख लिया आपने, अब दिल तो नहीं मानेगा ना कि आप उसको इस्तेमाल करें। और चले पानी कैसे पता चले थोड़ा ज़्यादा है, उसका रंग बदल दे, किसी ने यूरिनेट कर दिया पानी में तो स्मेल आ गई पानी में, या दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि क्या हुआ उसमें, कलर चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़े पानी में बुराई का, गंदगी का असर ज़्यादा दिखता है, बाकी में कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास शीट का अगला पेज खोल ले, वो क्या है कि पानी की ज़्यादा मकदार से क्या मुराद है। अब ये भी एक बार बार सवाल दिन में आ रहा है कि फिर कम ज़्यादा किसको कहेंगे आप, तो इसकी भी शरीयत ने हमें हदें दी हैं। पानी की ज़्यादा मकदार से मुराद दो कुल्ले, दो कुल्ले कितने होते हैं, 200 वसफ़, आप वो भी नहीं पता तो वो होते हैं 210 लीटर पानी। ये इब्ने माजा की रिवायत है 517। तो क्या समझ आया, अगर पानी 210 लीटर से कम होगा तो उस पर सारे वो रूल्स आएंगे जो थोड़े पानी वाले हैं, और अगर 210 लीटर से ज़्यादा है तो इंशाल्लाह वो फिर पाक रहेगा, वो थोड़ा पानी नहीं होता। और अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी बातें आपको मुझे हदीस से बताई, नबी सल्लम से, और ज़्यादा पानी की कोई हद नहीं है, वो जितना भी हो वो गंदा नहीं होगा। समंदर का पानी बहता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसमें से वो गंदगी निकलती जाती है। अब एक क्वेश्चन और भी है, पानी तो समझ गए, आप जब भी कोई तहारा पढ़ेंगे तो बर्तनों का जिक्र बहुत आएगा, आपके जहन में कुछ सवाल हैं बर्तनों के बारे में? हम सोने चांदी के बर्तनों में खा सकते हैं कि नहीं, और शराब रखने वाले बर्तन, और सबसे बड़ी बात नॉन मुस्लिम्स के बर्तन में खा सकते हैं कि नहीं? तो चंद बातें बर्तनों के नाते से देख लीजिए। नंबर एक, पानी किस बर्तन में रखना और इस्तेमाल करना जायज़ है। नंबर एक, सोने और चांदी के सिवा हर किस्म के पाक बर्तनों में पानी रखना और इन बर्तनों को इस्तेमाल करना जायज़ है। बुखारी की रिवायत है 5831 5633। क्या पता चला कि पानी को किसी भी ऐसी चीज़ के कंटेनर में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सोने और चांदी के बर्तन में पानी रखा हो तो क्या आप इससे तहारत हासिल कर सकते हैं? हो जाएगी तहारत, लेकिन पसंदीदा नहीं है। रिवायत जाके डिटेल से पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। सही बुखारी 5634 और मुस्लिम 5385। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या काफिरों के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं? मसलन लंडे के कपड़ों में से कोई लेकर अगर इस्तेमाल करता है, या कुफार ने बर्तन इस्तेमाल किए और फिर उसको सेल कर दिया, गैराज सेल बोलते हैं गालिबन इधर, यानी कह लीजिए कि कुछ भी इस्तेमाल शुदा बर्तन किए जा सकते हैं, तो अगर इसको नए बर्तनों पे लूँ तो फिर तो हमारे सारे ही पायरेक्स वायरेक्स ख़त्म हो गए। आज तो हम इम्पोर्टेड बर्तन लेते हैं, तो पहली बात है कि इम्पोर्टेड बर्तन भी कुफार के ही बने होते हैं, यहाँ मुराद के इस्तेमाल शुदा बर्तन। किसी के घर गए, आपकी दोस्त है, कुली है, नेबर है, तो जवाब इसका यह है कि काफिरों के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब तक के उसमें ये यकीन हो कि नापाकी नहीं है। बुखारी की रिवायत 5488 नंबर है, यानी उसको धो लीजिए उसको इस्तेमाल करने से पहले, और अच्छी तरह से उसमें से कोई इम्प्योरिटीज़ जो है उसको ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चमड़े में पानी रखा जा सकता है? आपने भी कभी देखी होगी, मश्क बोलते हैं जिसको, तो हलाल और पाक जानवर के चमड़े में पानी रखा जा सकता है। हलाल और पाक कौन से हैं वो आपको बताइए। क्या मुर्दार के चमड़े में पानी रख सकते हैं? अब आप देखिए, ये मुर्दार के चमड़े से, ज़रा से मैं आपको आज के दौर के भी इशू समझा दूँ, पर्सिस जूते, है ये इशू किसी का? सांप की खाल के पर्स होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और जूते होते हैं, और इसी तरह पिक की जो खाल है उसके लिए, इन सब को समझ लीजिए, क्योंकि आपने ना मैंने जाके चमड़े के इसमें पानी भरना है, क्योंकि ये इश्यूज आज नहीं है। आज बस सिंपल इशू ये है कि हराम जानवर है, चीता है, शेर है, गीदड़ है, जो भी जानवर यानी वैशी किस्म के हैं, तो क्या उनकी खाल या उनकी स्किन या लेदर जैकेट उनकी जो है वो उसको इस्तेमाल कर लें? तो इसमें पहली बात समझिए, ऐसे जानवर जिनका गोश्त हलाल है लेकिन इन्हें ज़िबा नहीं किया गया, ठीक है, यानी गाय हलाल है ना, लेकिन उसको ज़िबा अच्छी तरह नहीं किया गया मसलन, अब इसके चमड़े का बर्तन बने, अरब जो लोग थे इसके बर्तन बनाते थे, प्याले होते थे चमड़े के, इसी तरह से थे, या वही बात है मश्क है, गीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, यानी लिक्विड जो टच होता है, ठीक है, लेकिन दबागत, दबागत कहते हैं आज के दौर में टैनिंग को, टैन कर देते हैं ना ऊपर, चमड़े के ऊपर कोटिंग हो जाती है, उसको साफ करते हैं, धो नहीं सकते चमड़े को, पानी लगे तो ख़राब हो जाता है, जब उसको ऊपर कोई कवर कर दिया जाता है कोटिंग, या उसके ऊपर से वो चीज़ें हटाकर दूसरी है, इसको दबागत कहते हैं असल में अरबी में, उसके बाद फिर खुश्क चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका सवाल फिर पीछे हो सकता है, जहन में क्लियर ना हुआ हो कि क्या हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें और वो अपनी असल शक्ल में है, मतलब पिक की खाल है, नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। इसी तरह से कोई और गंदी चीज़ है, नहीं कर सकते। पहली बात है ज़रूरत क्या है। आपको पता है कि अगर 100 रुपये का पर्स है तो वो 1000 का पर्स लिखा होगा उस पर, ये फलां खाल से बना है, ये सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस है। एक ये भी मिजाज बदलने की ज़रूरत है, महंगी चीज़ें, यानी महंगाई का मियार क्या है। मैं अक्सर सोचती हूँ, जैसे किसी ने मुझे एक दफ़ा बताया कि छोटा सा पर्स है तो $2000 का है, तो मैंने कहा जब पर्स ही खरीद लिया तो इसमें डालना क्या फिर, गाड़ी डालने हैं ना बेचारे कर्जे के रखे हुए, कि आप $2000 का पर्स, आप सोचें ज़रा, फिर आप वो पर्स हाथ में पकड़ेंगे कि लॉकर में रखेंगे, बेकार ही आता है, अपनी जान पे बोझ डालना है। मुस्लिम का ये मिजाज नहीं है, जिस चीज़ से फ़ख्र और दिखावा और शोहरत हो। मुझे किसी ने एक दफ़ा एक ऐसा पर्स दिया, मुझे पता था असल में कि लोगों के मुंह से सुना था और मैंने कई दफ़ा दरसों में उसका नाम भी लिया था, मुझे किसी ने गिफ्ट में दे दिया। मुझे लगा ये खिंजीर के गोश्त से बना होगा, अगर मैंने पकड़ लिया तो लोग कहेंगे अच्छा जी ये इन्होंने पकड़ा हुआ ये पर्स, अब उनको क्या पता मैंने कहाँ से लिया दिया। खैर वैसे भी मुझे जो आदत है जो मैं करती हूँ, मैंने वो पर्स आगे से किसी और को गिफ्ट में दे दिया। तो वो कहे आपको पता है मुझे क्या दे रही हैं? मैं कहा मुझे पता है मैं आपको क्या दे रही हैं, आप खुद ले। मैंने कहा मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। कहती नहीं ये बहुत महंगा होता है। मैंने कहा इसलिए तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, लोगों को क्या पता। तो हमेशा मॉडरेट बन के रहें, आपके सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे। बी मॉडरेटेड, बीच में रहें, कभी पुराना पहने कभी नया पहने, कभी फटा हुआ पहन ले कभी उधड़ा कभी बहुत अच्छा भी पहन ले, लेकिन ये चीज़ें बहरहाल। शरण जो है इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको कभी फिर मौका मिलेगा तो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नजासत। ऑफकोर्स तहारत पढ़ें तो अल्लाह के नबी ने कहा कि चीज़ों को उसकी ऑपोजिट से पहचानो, तो तहारत का ऑपोजिट नजस चीज़ होती है, नजासत है। तो नजासत से क्या मुराद है? फर्स्ट क्वेश्चन, वो गंदगी जो इंसान के कपड़ों को या बदन को लग जाए या किसी जगह वो गंदगी मौजूद हो, तो जब तक उसको दूर ना किया जाए जिस्म कपड़ा या जगह पाक नहीं होते। मसलन आप देखिए पखाना, पेशाब, किसी जानवर का फुजला, कुत्ते का चाट लिया जाना, आप जा रहे थे कुत्ते ने लेक कर लिया कपड़े को, या आपके सामने कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल रहा है, तो इन सब को ना यहाँ दो तीन हिस्सों में बांटा है। आप देखिएगा एनी चीज़ें क्या होती हैं जिनको देख सकते हैं, आंखों से दिखती हैं। दिखने वाली चीज़ों की कितनी किस्में हैं? तीन चीज़ें हैं। नंबर एक जानदार, मुर्दार और जामिद यानी गैर जी रूह चीज़ें। क्या पता चला कि वो चीज़ें जो आंखों से नज़र आती हैं और उसकी गंदगी को आप महसूस कर सकते हैं वो ये तीन है। नेक्स्ट क्या है कि जानदारों की कितनी किस्में हैं? दो, पाक जानदार और नापाक। अब इसमें जानवर भी है तो जानवर है, जानदार है तो जानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नापाक जानवर कौन से हैं? अरबी जुबान में याद रखिए कि नापाकी के लिए हम आप अपनी अक्ल से नहीं सोचेंगे, कुरान और हदीस से लेंगे। मैंने ये जुमला क्यों बोला? लोग कहते हैं आजकल तो पिग बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, उनको शावर दिलाते हैं, उनके बाल शेव करते हैं और उनको धोते दिलाते हैं। तो ये जुमला आपको तहारत का एक बेसिक असूल समझा जाएगा। पाक और नापाक में मेयार ज़ाहरी सफाई दिखाई नहीं है। आजकल तो शराब भी बड़ी पाक है, कितनी डिस्टिल्ड है, कितने पैस्चराइज सिस्टम से गुजर के आती है, तो क्या वो अच्छी हो गई? कल वो उसकी बू भी ख़त्म कर दें बिलफर्ज, तो क्या वो पाक होगी? तहारत या पाकी नापाकी का मेयार कुरान और सुन्नत। जो बात अल्लाह के नबी ने हदीस में या कुरान में हमें बता दी वो पाक है और दूसरी नापाक है। तो फिर नापाक जानवर कौन से हैं? नंबर एक कुत्ता और नंबर दो सुअर और इनसे पैदा होने वाले जानवर। दूसरी हर वो परिंदा या चौपाया जो बिल्ली से बड़ा हो और इनका गोश्त ना खाया जाता हो। अब बिल्ली से बड़ा हो को आप छोड़ दीजिए, यानी दरिंदे जिसको कहते हैं, यानी जू महलब का लफ्ज़ अरबी में आता है पंजों से शिकार करने वाले, जैसे गिद्ध है गंदगी खाता है ना, मुर्दार खाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिनके लंबे लंबे नाखून है, मेरा ख्याल है समझ भी चुके हैं सूरत मायदा और सूरत अलनाम और सूरत नाहल में भी फिर आगे जिक्र इसका आता था। सारी बात का खुलासा कि वो जानवर जो चीर फाड़ करते हैं और वो जानवर जो पंजों से शिकार करते नाखनों से, ये जायज़ नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कुत्ता है इतना मासूम इतना प्यारा, तो फिर एक लॉलीपॉप का चुस्पा उसके मुंह में और दूसरा अपने मुंह में, और कुत्ता है क्यों और बिल्ली क्यों? ये है ना आज की जनरेशन के सवाल। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, दैट्स इट। जिसने कुत्ते को बनाया उसने कुत्ते के बारे में हुक्म दिया, क्या अल्लाह से ज़्यादा आप और मैं उससे प्यार करते? बिल्ली क्यों जायज़ हो गई और उसके तो मुंह में बाल होते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उसकी भी बता दी। बिल्ली का सवाल हुआ था, फरमाइन्नहा मिनत तौफीन, ये इर्द गिर्द फिरती रहती है। अब इस अगर बिल्ली हराम होती तो फिर यूरोप में तो आप नहीं रह सकते थे, राइट? बिल्लियाँ इधर उधर होती हैं, तो बहरहाल अल्लाह का जो हुक्म है वही ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप देखिए कि नापाक जानवर कौन से हैं, नापाक जानवरों का हुक्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। नापाक जानवरों का पेशाब, पखाना, लुआब, पसीना, मनी, दूध जो उनकी हवा निकलती है और कै, सब नापाक है। ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, सुअर का गोश्त तो नहीं खा सकते, तो क्या फिर उसकी फैट भी हराम है क्या? वो तो अलग है। सीधी सी बात है, जो जानवर हराम है उसका सब कुछ हराम है। अल्लाह ने बहुत वाज़े हुक्म दे दिया। नेक्स्ट क्या है, पाक जानदार कौन से हैं? तो याद रखिए, शरीयत का एक असूल है, हर चीज़ अपनी असल से पाक है। असलुल शैयुन मुबाहुन, हर चीज़ अपनी असल से पाक है, इल्ला ये कि उसकी कोई नस मौजूद हो। बस, तो पाक जानदारों में इंसान, ऑफ कोर्स, लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसनी तकवीम, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, हर वो जानवर जिसका गोश्त हलाल है उसका सब कुछ हलाल है। और तीसरी बात, वो जानवर जिनसे बचना मुश्किल हो वो भी पाक है। जैसे भी आपको बिल्ली की मिसाल दी है, कुछ और भी इसकी डिटेल्स हैं जिसकी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब इंसान का लफ्ज़ आया, तो क्वेश्चन ये है कि इंसान के बारे में क्या हुक्म है? क्योंकि आप देखें ना, इंसान है, अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं, इंसान अपनी असल से है, तो याद रखिए कि इंसान का पसीना हलाल होता है। यहाँ अब आपको एक दो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन एक है हमारी तबीयत का इकराह और एक है हलाल और हराम का मसला। पसीना आ जाए, जिस्म को लग जाए, कपड़े को लग जाए, कुरान पढ़ रहे थे हाथों में पसीना आ गया, डोंट वरी एट ऑल। लुआब, थूक, गंदी तो लगती है, लेकिन थूक किसी कपड़े बर्तन पे किसी चीज़ पे लग जाए कोई हर्ज नहीं। फिर इसी तरह से नज़ला, ज़ुकाम के रास्ते से, नाक से जो निकलता है, ये पाक होता है, पसंद कोई नहीं करता। लेकिन आप मसला फिर समझ लीजिए, इसका ये नहीं मतलब कि इसको लगते ही रहने दें और बहते ही रहने दें, ये मुराद नहीं है। देखिए, तहारत जो है, यहाँ हम इस एंगल से पढ़ रहे हैं कि जिस पे हमारी इबादत की कबूलियत है। फिर आप देखिए कि, यानी आप समझ रहे हैं ना, बिलफर्ज, देखिए मैं आपको मिसाल दूँ, ज़ुकाम नापाक होता तो फिर हर वक्त गुसल करना पड़ता ना, तो लिहाजा जो भी ऐसी जिस्म से सेक्रीशन निकलती है वो जायज़ है। फिर इसी तरह औरत का दूध, अपने कपड़े को लग गया है, बच्चे को फीड कराती हैं जब माएँ, तो बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा दूध जो है वो जिस्म से निकलता है, किसी जगह लगे आपके, क्या मैं अब इन कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकते हैं, पाक होता है। फिर इसी तरह रीट, बलगम, फिर इसी तरह से एक सेक्रीशन औरतों के जिस्म से निकलती है, जैसे लिकोरिया आप कह लेते हैं, किसी हद तक वो मतलब सेक्रीशन जो बग़ैर ख्वाहिश के पैदा होती है या मजबूरी है, तो वो भी पाक है। इसी तरह मनी और मजी का एक फ़र्क होता है, ये जब आप इंशाल्लाह डिटेल से हदीस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये है कि शौहर बीवी के ताल्लुक़ में ख्वाहिश के वक्त या उससे पहले जो सेक्रीशन है वो पाक है, लेकिन जो आखिरी रिज़ल्ट है वो नापाक है। अब इसकी मज़ीद डिटेल की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी रही और आप आगे इल्म में बढ़ते जाएंगे तो आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान के जिस्म के तमाम अज्ज़ा और सोए हुए शख्स के मुंह से जो बहने वाला पानी है, राल जिसको बोलते हैं, ये भी पाक है। फिर इसी तरह से नापाक क्या है, पेशाब, पाखाना, मजी, वदी और खैस का खून, पीरियड्स का ब्लड। क्या मुर्दा नजस होता है? क्वेश्चन है, एक मुर्दा नजस नहीं होता। हदीस में बुखारी 283, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, आप पढ़ चुके हैं अशर मुबशरा में, डेड बॉडी को हाथ लग जाए तो क्या हाथ धोने पड़ेंगे? अल्लाह अकबर, अगर हमें इसका दुनिया में यकीन आ जाए तो फिर बात क्या बने। बहरहाल, नेक्स्ट चलिए, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनके बारे में क्या हुक्म है? जिन जानवरों का गोश्त हलाल है तो क्या फिर उनका सब कुछ हलाल है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। आप देखिए ज़रा सा इसको समझ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना कीजिएगा, ना सोचिएगा, क्योंकि ये बातें तब तक समझ नहीं आएंगी जब आप इसकी फिर इन डेप्थ ना पढ़े। लेकिन चूंकि खुलासा देना मकसूद था, तो जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, लीथ, मनी, दूध, पसीना, लुआब और इस तरह की चीज़ें भी पाक है। एक वाक्य आता है हदीस में कि कुछ लोग बीमार हुए थे, तो नबी सल्लम ने उनको दूध और पेशाब मिलाकर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। ये सही हदीस है बुखारी की, बहुत सारे लोग आज उस पर बहस करते हैं, पाक होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, वो जानवर जिनसे बचना मुश्किल है उनके बारे में क्या हुक्म है? यानी जिनसे आप बच ही नहीं सकते, तो उनके बारे में भी वही बात है कि वो हलाल है। फिर इसे मुर्दा जानवर या मुर्दार, ये है असल में यहाँ का एक अजीब बड़ा इशू, कि इसके बारे में क्या हुक्म है, जिसको आप क्या कहते हैं कि जो जानवर खुद मर गया। तो याद रखिए, दो नंबर, एक मछली और टिड्डी। टिड्डी किसको कहते हैं?
लोकस
लोकस को। ये दोनों हलाल है। इसके अलावा जो मुर्दार खुद मर जाएं वो हराम है। यानी सी फूड को कह लीजिए, इसका भी एक सिंपल सा रूल लिख लें, फिर जो जिसको जितना मिल गया उसे ले लीजिएगा। और वो क्या है कि वो जानवर जो पानी से निकालते ही मर जाए, उसको बगैर ज़िबा किए खाना भी हलाल है। और वो जानवर जो पानी के बाहर भी ज़िंदा रहते हैं, मसलन फ्रॉग, मेंढक, पानी में भी ज़िंदा, पानी के बाहर भी ज़िंदा, कछुआ, पानी में भी ज़िंदा, पानी के बाद भी, तो वो हलाल नहीं होगा। ठीक है, जो जानवर सी फूड में से बाहर निकलने से मर ना जाए वो फिर इस मद में नहीं आएगा। तो क्या कह सकते हैं आप मुर्दा के लिए क्या है? मछली और टिड्डी के सिवा हर जानवर के मुर्दा नापाक है। फिर वो जानवर जिसमें बहने वाला खून नहीं होता, बिच्छू है, चींटी है, मच्छर है, यानी इनको भी ज़्यादा डेप्थ में अपना समझें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये है कि चींटी कहीं घर में घुसे, पाक है, चींटियाँ बुरी नहीं होती। अब आपको बुरी तो लगती हैं, इसी तरह से आप देखिए चींटे, कॉकरोच, अब क्या करेंगे? अगर ये नापाक होते तो फिर तो सारा दिन ही घर को धोते रहते आप। जर्म्स वाला होना और बात है, उससे कोई नुकसान होना और बात है, लेकिन बहरहाल ये है कि ऐसी चीज़ों को मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखे।